नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो
जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्वपत्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तमश्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिके ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 21वां अध्याय महाराज पृथु द्वारा उपदेश। श्लोक संख्या 45 बोलते हैं ना 45। मैत्रेय उवाच
इति
ब्रुवाणम्
ब्रुवाणम्
नृपतिम्
नृपतिम्
पित्रे
पित्रे
द्विजातयः
द्विजातयः
देव
देव
द्विजातयः
द्विजातयः
तुष्टुवुः
तुष्टुवुः
हृष्टमनसः
हृष्टमनसः
साधुवादेन
साधुवादेन
साधवः
साधवः।
मैत्रेय उवाच
मैत्रेय उवाच
इति ब्रुवाणं नृपतिम्
इति ब्रुवाणं नृपतिम्
पितृदेव द्विजातयः
पितृदेव द्विजातयः
तुष्टुवुर्हृष्टमनसः
तुष्टुवुर्हृष्टमनसः
साधुवादेन साधवः
साधुवादेन साधवः।
मैत्रेय उवाच
मैत्रेय उवाच
इति ब्रुवाणं नृपतिम्
इति ब्रुवाणं नृपतिम्
पितृदेव द्विजातयः
पितृदेव द्विजातयः
तुष्टुवुर्हृष्टमनसः
तुष्टुवुर्हृष्टमनसः
साधुवादेन साधवः
साधुवादेन साधवः।
मैत्रेय उवाच
मैत्रेय उवाच
इति ब्रुवाणं नृपतिम्
इति ब्रुवाणं नृपतिम्
पितृदेव द्विजातयः
पितृदेव द्विजातयः
तुष्टुवुर्हृष्टमनसः
तुष्टुवुर्हृष्टमनसः
साधुवादेन साधवः
साधुवादेन साधवः।
मैत्रेय उवाच
मैत्रेय उवाच
इति ब्रुवाणं नृपतिम्
इति ब्रुवाणं नृपतिम्
पितृदेव द्विजातयः
पितृदेव द्विजातयः
तुष्टुवुर्हृष्टमनसः
तुष्टुवुर्हृष्टमनसः
साधुवादेन साधवः
साधुवादेन साधवः।
मैत्रेय उवाच
मैत्रेय उवाच
मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा
मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा
इति
इति
इस प्रकार ब्रुवाणम
ब्रुवाणम
बोलते हुए नृपतिम
नृपतिम
राजा को पितृ
पितृ
पितृलोक के
पितृलोक के निवासी देव देव
देवता
देवता
द्विजातयः
द्विजातयः
तथा द्विजो
तथा द्विजो ब्राह्मणो एवं वैष्णवों ने
तुष्टुः
तुष्टुः
संतुष्ट
संतुष्ट
हृष्टमनसः
हृष्टमनसः
मन में अत्यंत प्रसन्न
मन में अत्यंत प्रसन्न
साधुवादेन
साधुवादेन
बधाई देते हुए
बधाई देते हुए
साधवः
साधवः
उपस्थित समस्त साधु पुरुष
उपस्थित समस्त साधु पुरुष।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। मैत्रेय ऋषि ने कहा राजा पृथु को इस प्रकार संभाषण करते सुनकर सभी देवताओं पितृलोक के वासियों, ब्राह्मणों तथा उस सभा में उपस्थित साधु पुरुषों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए साधुवाद दिया। तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति किसी सभा में बहुत अच्छा भाषण देता है तो श्रोता लोग साधु साधु कहकर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। यदि यही साधुवाद है, उस सभा में जितने साधु पुरुष, पितर तथा देवता उपस्थित थे और उन्होंने और जिन्होंने पृथु महाराज को बोलते सुना, उन्होंने साधु साधु शब्दों से अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। उन सबों ने पृथु महाराज के संदेश को अंगीकार कर लिया और वे अत्यधिक प्रसन्न हुए।
साधु साधु। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीतत्पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। साधुवादेन साधुवाद, जब कोई व्यक्ति किसी सभा में बहुत अच्छा भाषण देता है तो श्रोता लोग साधु साधु कहकर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, यही साधुवाद है। अंग्रेजी में क्या है?
When a person speaks very nicely at a meeting, he is congratulated by the audience, who express their goodwill with the words sadhu sadhu. This is called sadhuvad.
तो ये तरीका होता है। साधारण दुनिया में वैसे क्या बोलते हैं? वाह वाह बोलते हैं, शाबाश बोलते हैं, लेकिन कोई अच्छी बात बोलता है तो वैदिक सभ्यता में साधु साधु बोलते हैं। भागवत में भी ऐसे कोई श्लोक स्मरण आता है? इसमें इस संदर्भ में साधु शब्द का प्रयोग है। साधु मतलब अच्छा, बहुत अच्छा। साधु साधु मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह। और अकेले एक बार साधु मतलब साधु पुरुष के अर्थ में नहीं, लेकिन इसी अर्थ में कि बहुत अच्छा।
स्वादु
स्वादु पदे पदे, वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यशृणुतामृत ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। ये आप जो कृष्ण कथा बोल रहे हैं ये अमृत में लग रहा है और हर पद में इसका स्वाद बढ़ते जाता है, इसलिए हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, हमको और भी इस अमृत कथा का पान करना है। तो वो स्वादु है, स्व स्व, ये साधु। मुनयो साधु पृष्टो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। एक ही नहीं श्लोक पता है, फिर याद नहीं आया?
एक ही बार साधु है।
फिर भी अर्थ तो वही है। क्या अर्थ है इसका?
जो
कौन बोल रहे हैं?
सूत गोस्वामी,
सूत गोस्वामी
शौनक आदि ऋषियों को संबोधित करते हुए, शौनक आदि ऋषियों को संबोधित करते हुए,
मुनयः, मुनयः बहुवचन हो गया। तो हे मुनिजनों, मुनि उन्होंने मुनियों ने क्या किया था,
प्रश्न
पूछे थे सूत गोस्वामी से। तो प्रश्न सुन के सूत गोस्वामी ने ऐसे उत्तर दिया, मुनयो हो
साधु पृष्ठो हम,
मतलब
आपने जो प्रश्न किया है,
पृष्ठ पृष्ठ मतलब प्रश्न किए, किन से किए,
शौनक ऋषि से,
अहम मुझसे, मतलब सूत गोस्वामी से, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, मुनय साधु पृष्ठो पृष्ठ अहम, आपने साधु मतलब बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं मुझसे, अहम अहम मतलब मैं, मुझसे
भवद्भिर लोक मंगलम, जो आपने प्रश्न किया है पूरा लोक मंगल के लिए किया है। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, ये कृष्ण से संबंधित है, आप जो प्रश्न कर रहे हैं कृष्ण से संबंधित है। एनात्मा सुप्रसिद्धति, इसको सुनकर आत्मा का कल्याण हो, सुप्रसिद्ध।
बहुत अच्छा। तो जब कोई प्रामाणिक वैष्णव कोई इस तरह की बातें करता है जैसे कि पृथ्वी महाराज ने किया है, तो सारे साधु संत ब्राह्मण, वास्तविक जो ब्राह्मण होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरी ओर कोई उल्टा पुल्टा कुछ बोल देता है तो सब निराश हो जाते हैं, तो कुछ उदास नाराज हो जाते हैं, अरे क्या बोल रहा है। इसलिए हम जो भी बोलते हैं गुरु साधु शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, हम इधर उधर से कुछ नहीं बता सकते हैं। ये हमारा आधार है। जैसे श्री प्रभुपाद जी बताया करते थे कि जब कोई वकील अदालत में जाता है और न्यायाधीश के सामने अपने ग्राहक की ओर से कुछ तर्क रखता है तो वो कानून के ग्रंथों से कुछ बात करता है, अपने मन से नहीं बात करता। वो कहता है कि महोदय इस ग्रंथ में, कानून के इस ग्रंथ में यहाँ पे ऐसे लिखा है और इसलिए हमारे जो ग्राहक हैं वो इसके गुनाहगार नहीं हैं, इसलिए उनको रिहा किया जाए, छोड़ दिया जाए। तो कानून के ग्रंथों से ही वो बात करेगा, अपने मनमाने ढंग से नहीं करेगा। कोई न्याय वकील यदि जाके अदालत में बोले न्यायाधीश से कि महोदय मैंने मेरा एक अपना ही कानून का ग्रंथ लिखा है जिसमें क्या है, जो खून करता है वो सही है, चोरी करना सही है, ऐसे मैंने अपने ग्रंथ लिखे हैं, तो इस ग्रंथ के आधार पर आप निर्णय लेना कि ये व्यक्ति ने गुनाह किया है कि नहीं। तो कोई न्यायाधीश मानेगा, वो क्या बोलेगा,
सरकार ने
बोलो मैं भी नया कानून बनाता हूँ, इसको जेल में डालो ऐसे बोलेगा ना, तो कौन स्वीकार करेगा। तो उसी तरह से हम भी बिना गुरु साधु शास्त्र के आधार पर कुछ भी बोलते हैं तो वो बकबक है। बकबक बकबक म्हणजे काय, अर्थहीन, अर्थहीन कोई बातें होती है उसको बकबक बोलते हैं, बड़बड़ाहट होती है। और उपदेशामृत के तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं वाचो वैगन के संबंध में, कि जो मेंढक होता है वो कुड़कुड़ाते रहता है, कुर्र कुर्र से आवाज करता है और उसको लगता है कि मैं कितनी अच्छी बात बोल रहा हूँ और मेरी वाणी कितनी मधुर है, वो केवल उसको ही ऐसे लगता है। परंतु सांप इसको सुन के आकर्षित हो जाता है और वो मेंढक को पकड़ के खा लेता है। तो इस तरह की जो बड़बड़ाहट है ये केवल मृत्यु का निमंत्रण है। उसी तरह से जो व्यक्ति केवल बड़बड़ाता है, बकबक करता है, इसका कोई गुरु साधु शास्त्र से कोई संबंध नहीं है, तो फिर वो केवल समय व्यर्थ गवाता है और मृत्यु के एक दिन निकट पहुंच जाता है, परंतु जो भगवान कृष्ण के बारे में वार्तालाप करता है, गुरु साधु शास्त्र के आधार पर अपनी बातें रखता है, तो उसका समय का सदुपयोग होता है, इसलिए वो एक दिन मृत्यु के निकट नहीं पहुंचता है। कौन सा श्लोक?
आयुर्हरति वैपुंसं उद्यन्नस्तं च यन्नसौ तस्यार्थे कथिता यहर्ता
तस्यार्थे यत् क्षणोनीत
तस्यार्थे यत् क्षणोनीत उत्तम
श्लोक वार्तया। बहुत अच्छा, क्या अर्थ है इसका?
आयुर्हरति वैपुंसं, ऐसे लोगों का आयु हरते हैं।
पुंसा मतलब
ऐसे लोगों का आयु हरता है, जैसे सूर्य उदित होता है और अस्त होता है, वैसे उनका एक दिन जाता है,
मृत्यु के एक दिन निकट चले जाते हैं, उनकी आयु
हरती है,
हर ले जाती है।
लेकिन जो कृष्ण की कथा में समय का बात है, वो उनका आयु हरते नहीं, वो कृष्ण के पास जाते हैं।
आयुर्हरति वैपुंसां उद्यन अस्तम चयन असौ तस्यर्ते यत् क्षणो नीत। तो केवल एक क्षण भी, जितने क्षण व्यक्ति उत्तम श्लोक वार्ता या वार्ता उत्तम श्लोक या कृष्ण के बारे में करता है, तो उसके लिए ऐसे नहीं होता, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो इसलिए हमारे लिए एक प्रमाण है। आजकल ये लोग बोलते हैं मुझे बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, है ना, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो आए मन में बोलेंगे, जो भी आए बोलेंगे। लेकिन ये क्या बकबक है, कैसा ही है, कोई भी आए। वैसे एक धार्मिक सभ्यता के अनुसार कोई भी किसी भी प्रकार की बातें नहीं बोल सकते हैं, उनको दंड दिया जाता है वैदिक सभ्यता के अनुसार। तो ये जो कुछ भी बात करने की एक जो आदत हो गई है लोगों को, जैसे कोई भी कुछ बेहतर, तो हम समाज में लोग बोले वो कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। तो गुरु साधु शास्त्र के आधार पर नहीं होगा तो कुछ भी हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ऐसे कुछ भी बातों से बहुत नाराज हो जाते थे। महाप्रभु के पास बहुत लोग आते थे मिलने के लिए, उनमें से कई लोग ऐसे थे जो कवि थे, जिन्होंने उपन्यासकार थे, है ना, ऐसे लेखक थे, और वो अपने अपने रचनाओं को महाप्रभु को सुनाना चाहते थे। तो दो चार बार एक बार सुन लिया होगा, महाप्रभु ने बोला कि क्या क्या लिखते हैं, कितने इसमें गलतियां होती हैं, दार्शनिक दृष्टि से गलतियां हैं और रचना की दृष्टि से, व्याकरण अलंकार आदि के दृष्टि से गलत है, या व्याकरण की दृष्टि से सही हो भी, लेकिन जब दर्शन और रस तत्व के दृष्टि से ठीक नहीं है, तो महाप्रभु को ये बहुत दुख होता था ये सब सुन के। तो इसलिए उनके जो सहायक थे, निकट के भक्त स्वरूप दामोदर, उन्होंने एक नियम बनाया कि जो भी कोई रचना, चाहे वो कविता हो, कोई पंक्ति हो, कोई नाटक हो, कोई लेख हो, उपन्यास हो, जो भी कुछ गीत हो, कुछ महाप्रभु को सुनाना चाहे, तो पहले स्वरूप दामोदर सुनते थे। स्वरूप दामोदर देखते थे कि ये क्या गुरु साधु शास्त्र के अनुसार है कि नहीं है, यदि नहीं होता तो फिर वो आगे उसको जाने नहीं देते। यदि स्वरूप दामोदर के अनुमान से ये ठीक होता तो फिर वो आगे महाप्रभु के सामने बोलता, महाप्रभु बहुत आनंद से उसका श्रवण करते और सारे भक्तों को बुलाकर अच्छा एक उत्सव सा हो जाता था। परंतु जब कोई गलत बोलता था तो स्वरूप दामोदर उसको आगे जाने के लिए नहीं देते थे। तो एक बंगाल से कवि आया, तो उसके बारे में किसको पता है? चैतन्य चरितामृत में है लीला। हाँ अच्छा,
तो बोल रहे थे कि मैंने एक कविता लिखी है जगन्नाथ जी और महाप्रभु दोनों के ऊपर।
नहीं, वो कथा बताओ सब संक्षेप में, क्या हुआ क्या?
अरे तो, वो पहले स्वरूप दामोदर के गोस्वामी के पास है। तो
नहीं, क्यों, कैसे आए, कैसे उधर?
वल्लभ भट्ट
भगवान आचार्य कह के एक भक्त थे जो महाप्रभु के पार्षद थे। तो ये भगवान आचार्य के तो दोस्त थे, वो बंगाल के कवि, तो उनके दोस्त रिश्तेदारी कोई भी थे, वो आए बंगाल से, तो भगवान आचार्य को जानते थे। तो क्योंकि इतने कवि थे, उन्होंने बहुत आग्रह किया भगवान आचार्य से, अरे मेरे को चैतन्य महाप्रभु के सामने ये दिखाना है बोल के, मैंने जो रचना की है उसकी। तो भगवान आचार्य थोड़ा भोला था, तो उसने जाके स्वरूप दामोदर को बहुत आग्रह किया। तो स्वरूप दामोदर ना 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 बोला। तो पर तो बार बार ये आग्रह करने के फिर स्वरूप दामोदर को ठीक है, अभी ऐसा हमारा ही भक्त है, अभी क्या करेंगे, ठीक है चलो मैं सुन लेता हूँ। तो उसने बोला, अरे तुम्ही गोप परम उदार, जायते जायते इच्छा उपजाई तुम्हार। बोलते अरे भगवान आचार्य, तुम तो बहुत भोले भाले, तुम्हारा स्वरूप है ग्वालवाल का, बहुत भोले भाले हो, किधर इधर उधर की बातें सुनना पसंद करते हो, तो कोई भी आए कुछ बोलने के लिए तुम सुन लेते हो, बहुत उदार तुम्हारा हृदय है। तो ऐसे इधर उधर से बातें नहीं सुननी चाहिए, जो बिल्कुल प्रमाणिक बातें हैं वही सुननी चाहिए। खैर उन्होंने बोला था इसलिए उन्होंने सुन लिया। तो फिर वो कवि था बंगाल का कवि, उसने आके संस्कृत में एक श्लोक पहले कहा कि मैंने एक नाटक लिखा है। तो सबसे पहला श्लोक होता है स्वरूप दामोदर ने कहा कि वो सुना उनको। एक प्रक्रिया होती है नाटक लिखने की, ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ बैठे नाटक लिखना शुरू कर दे। वैदिक सभ्यता वैदिक पद्धति के अनुसार एक क्रम होता है, पहले क्या होना चाहिए बाद में क्या होना चाहिए, जैसे हम लोग जब शुरू करते हैं मंगलाचरण होता है इत्यादि, ना एक पद्धति होती है। उसी तरह से नाटक लिखने के लिए भी एक पद्धति होती है, जैसे रूप गोस्वामी ने भी किया अपने नाटकों में। तो फिर पहला श्लोक सुनने के लिए सुनाने के लिए कहा स्वरूप दामोदर ने, और एक श्लोक सुना दिया उस कवि ने। तो फिर स्वरूप दामोदर ने क्या कहा, क्या वर्णन किया था उस वो कवि ने?
जगन्नाथ जी और महाप्रभु के बारे में था, तो एग्जैक्ट दर्शन में क्या होती वो याद नहीं आ रहा है।
किसी को याद है चैतन्य चरितामृत की लीला? उन्होंने कहा ये तथा कथित प्रशंसा थी परंतु वास्तव में निंदा हो गई, क्योंकि भगवान आचार्य के जो मित्र थे बंगाल के कवि, उन्होंने प्रशंसा की दृष्टि से इसको प्रस्तुत किया, परंतु वास्तव में क्योंकि ये आध्यात्मिक या गुरु साधु शास्त्र के अनुसार नहीं था, इसलिए भगवान के प्रति अपमान हो गया, अपराध हो गया। इसने कहा कि वही जगन्नाथ जो कि दारू है, अब उनके अंदर भगवान प्रकट हो चुके हैं और अभी वो जगन्नाथ बने और अभी चैतन्य महाप्रभु उनके समक्ष आए हैं और उनमें और इनमें अंतर नहीं है, ऐसा वो कुछ बोल रहे थे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बड़ा गुस्सा आया सुन के कि तुमने बहुत गलतियां की है इसमें, सबसे पहले श्लोक में तो आगे भी सुनने का सवाल ही नहीं है, तुम्हारा नाटक क्या सुनेंगे, तुम्हारा पहला ही जो मंगलाचरण है पहला श्लोक ही गड़बड़ है, आगे क्या सुनेंगे अभी। तो उन्होंने कहा कि पहली गलती आपकी ये है कि आप भगवान जगन्नाथ और उनके विग्रह को आप अलग समझ रहे हो, कि वास्तव में भगवान और उनके देह में देह देही विभागोयम नेश्वरी विद्यते क्वचित न इह देह देही भेद विद्यते ईश्वर क्वचित। कभी भी क्वचित ईश्वर या भगवान के लिए देह में और देह में रहने वाले में कोई अंतर नहीं, जबकि हमारे लिए ऐसे है, हमारे शरीर और आत्मा में अंतर है, भेद है, परंतु भगवान और भगवान के देह में कोई अंतर नहीं। कृष्ण का शरीर ही आत्मा है, कृष्ण की आत्मा ही शरीर है, क्योंकि वो सब सच्चिदानंद विग्रह हैं। और विग्रह जो मूर्ति है वो भी भगवान से अभिन्न है, इसलिए मूर्ति के लिए भी हम ये नहीं कह सकते कि अभी ये भगवान उनके अंदर गए हैं, भगवान अलग हैं, उनके विग्रह अलग है, तो तुमने ये भेद किया। देह देही विभागो यम, तुमने विभाजित कर दिया, इनको अलग कर दिया, ये बहुत बड़ा अपराध हो गया। जबकि भगवान और उनके देह में कभी अंतर नहीं होता। और दूसरी बात कि तुमने चैतन्य महाप्रभु को एक जीवात्मा समझा है, जो कि गलत है, और इस तरह से उनको सबके सामने एकदम डांटा, साधु साधु नहीं कहा, बल्कि कहा भी होगा तो असाधु असाधु नहीं कहा ऐसे, लेकिन उनकी बातें गलत थी, तो इतना डांटा उनको सबके सामने। परंतु ये ब्राह्मण ये जो कवि था उसका सौभाग्य था कि वो नम्र था, इसलिए उसने ये डांट सुन ली नम्रता से और क्षमा याचना की, उसे कहा ठीक है ठीक है हम उसको मान लेंगे। जब ये कवि ने सुनाई ना, वो पहला श्लोक सुनाया, तो भगवान आचार्य और जितने भी अन्य वैष्णव बैठे थे ना वहाँ पे, उन्होंने सब ने वाह 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 साधु 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 कहना शुरू कर दिया। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को दुगना गुस्सा आ गया, पहले तो ये गड़बड़ बोल रहा है और दूसरा बात हमारे ये भक्त लोग सब हाँ हाँ हमें हाँ मिला रहे हैं, साधु 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 बोल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो भक्त वो सब भोले भाले भक्त थे, उनको ज्यादा ये सब दर्शन वर्शन इतना नहीं था। चैतन्य महाप्रभु में श्रद्धा थी, भक्ति में श्रद्धा थी, लेकिन ज्ञान इतना शायद नहीं भी था, गांव के लोग तो इधर से आए थे, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, इनको इतना पता नहीं था, थोड़ा बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वान भी थे जैसे श्रीवास ठाकुर थे, गोपीनाथ आचार्य थे इत्यादि, परंतु अनेक ऐसे थे जो थोड़े भोले थे। उन्होंने सबने सुना तो वाह 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 साधु साधु साधु, उस समय स्वरूप दामोदर को गुस्सा आया, तो ऐसे डांटा उन्होंने। और ये प्रसंग काफी लंबा है। फिर उसने उन्होंने स्वरूप दामोदर ने कहा कि कैसे सरस्वती देवी ने आपके वचनों को बदल के भगवान की स्तुति की है, और जो शब्द आपने इस्तेमाल किए उनको गलत एक एक सही अर्थ डाल के कैसे सरस्वती देवी ने भगवान को अर्पण किया है। तो खैर अभी वो नम्र हो गए, वो सीख गए, उन्होंने क्षमा याचना की, इसलिए स्वरूप दामोदर प्रसन्न हो गए और फिर महाप्रभु की कृपा उस कवि को मिल गई, क्योंकि गलती उसने मान ली। तो महाप्रभु रसाभास सुनना नहीं चाहते थे, ये सब ये तो घोर दार्शनिक गलती थी, परंतु रसाभास की बात भी हो जाए, जैसे अभी समझ लीजिए सख्य रस का मिलन वहाँ मधुर रस में हो गया कुछ, या हास्य और क्रोध का एक समय हो गया, तो ये रसाभास हो जाता है, रस ठीक से नहीं मिलते हैं। तो महाप्रभु ऐसे कविताओं को आदि नहीं सुनना चाहते थे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वैष्णव एक विद्वत समाज में जहाँ पे सब लोग सुसंस्कृत हैं, उनके बीच में जानकार लोगों के बीच में बिल्कुल सही बोलना चाहिए, जहाँ किसी को कुछ मालूम नहीं है तो काना राजा हो जाता है, जहाँ अंधा अंधे लोग हैं काना राजा हो जाता है। परंतु तो वही काना जब ऐसे लोगों के बीच में जाता है जिनकी दृष्टि बहुत सही है तो फिर वो पीछे रह जाता है। उसी प्रकार से जिसका अल्प ज्ञान है या लगता है कि ज्ञानी बहुत है, जिनका ज्ञान कम है उनके बीच में जाके लोग उसको वाह 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 कहते हैं। परंतु जब वास्तविक विद्वान लोगों के बीच में आता है तो फिर ऐसे लगता है कि हंसों के बीच में ये बतख कहाँ से आ गया। तो फिर वो उसको लगा कि अरे मैं हंसों के बीच में बतख के समान हूँ, तो फिर महाप्रभु की कृपा उस व्यक्ति को मिल गई। तो पृथु महाराज ऐसे नहीं, वो एक आदर्श भक्त है वैष्णव, इसलिए जो भी बातें उन्होंने की थी वो बिल्कुल सही थी। हमें जितना हमने सुना है गुरु शिष्य परंपरा से सही जो प्रामाणिक है उसको दोहराना चाहिए, एक डाकिया की तरह, पोस्टमैन की तरह। जब डाकिया आके आपको कोई चिट्ठी देता है तो वो अपनी टीका भी लिखता है क्या उसमें, जैसे पोस्ट कार्ड आजकल भी है क्या, पोस्ट कार्ड वगैरह आता है क्या आजकल चलता है ना, तो पोस्ट कार्ड तो सबको दिखता है ना क्या लिखा है उसमें करके। तो पोस्ट कार्ड में जो भी कुछ लिखा हो कोई आदमी वहाँ से भेजता है, बेंगलोर से या आमटे में भेजा है किसी को, हाँ तो डाकिया लेके आता है, तो डाकिया क्या अपना कुछ बातें लिखता है, नहीं तुमने ठीक नहीं कहा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो वो अपना बात नहीं लिखेगा ना, वो आके सीधा चिट्ठी दे देगा, बस उसका काम नहीं है। उसने दिन लिखने वाले ने सही लिखा नहीं लिखा क्या उसका काम नहीं। तो जब हम सही तरह से सही लोगों से सुनते हैं और उसी बात को दोहराते हैं तो फिर वही सही है, वही सुरक्षा का रास्ता है। अपने मनमाने ढंग से कुछ हमको निकाल के बोलना नहीं चाहिए। तो पृथु महाराज हमारे लिए एक आदर्श है। आज वैसे एकादशी सोमवार को थी ना, आज क्या है बुधवार है, तो कल द्वादशी थी, आज त्रयोदशी, तो धन त्रयोदशी धनतेरस बोलते हैं, और धन्वंतरी का आविर्भाव दिवस। धन्वंतरी कौन है? जो धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय जब देवलोक और असुर लोग समुद्र का मंथन कर रहे थे तो उसमें से बहुत वस्तुएं और व्यक्ति उत्पन्न हुए उस समुद्र से, और उसमें से धन्वंतरी भी उत्पन्न हुए, अमृत का कलश लेकर आए। अब धन्वंतरी है कौन? भगवान है, भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार है। और किसके लिए प्रसिद्ध है वो?
औषधि
के लिए, अर्थात आयुर्वेद शास्त्र का निर्माण उन्होंने किया। आयुर्वेद शास्त्र मूल लेखक धन्वंतरी हैं, वो शक्त्यावेश अवतार है। तो धन्वंतरी का आविर्भाव अब हुआ था। आप जितने भी बड़े आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं जो पुराने पारंपरिक पद्धति से चल रहे हैं उनमें अवश्य आप धन्वंतरी का एक मंदिर देखोगे, है ऐसे? हरी राम प्रभु के हॉस्पिटल में है, धन्वंतरी है, तो फिर उत्तर क्यों नहीं दिया हमने?
वो एक बार मुरली का प्रभु लाए थे हमारा को, कौन वल्लभ निमाय प्रभु, जब शुरू किया था उन्होंने उनको लेके आके उनका डेली उनका, क्योंकि वो मेडिकल में थे इधर, तो उधर से हमारा।
अच्छा अच्छा, तो धन्वंतरी वो कुंभ अमृत का कुंभ लेके कलश लेकर आते हैं, तो आज उनका आविर्भाव दिन है। और समुद्र मंथन में और कौन उत्पन्न हुए? लक्ष्मी देवी भी आई, और दीपावली के दिन कल आने वाले कल उनका आविर्भाव दिन है और धन त्रयोदशी तो धनवंतरी त्रयोदशी और इस दिन पे लोग धन को भी चाहते हैं दिवाली के समय शुभ लाभ वही चलता है ना लक्ष्मी देवी का भी है और धन त्रयोदशी तो सोना खरीदते हैं और ये सब ये 3-4 दिन का उत्सव होता है द्वादशी से लेकर फिर प्रतिपद तक चलता है त्रयोदशी बल्कि धन त्रयोदशी है और फिर चतुर्दशी क्या है नरक चतुर्दशी और उसके बाद अमावस्या है जिसमें दीपावली है उसके बाद प्रतिपद जो कि बलि बलि दैत्यराज पूजा है और गोवर्धन पूजा है। तो आज वैसे त्रयोदशी चतुर्दशी लुप्त हो गया इस पर गायब हो गया क्योंकि चतुर्दशी तिथि बहुत छोटी है तो आज वैसे त्रयोदशी है और कल अमावस्या है तो चतुर्दशी गायब कभी कभी ऐसे हो जाता है इसलिए आज त्रयोदशी चतुर्दशी दोनों मान के चलते हैं। तो आज नरक चतुर्दशी या कल भी मान सकते हैं नरक चतुर्दशी नरक कौन नरक कौन है नरकासुर तो कौन बताएंगे संक्षेप में वो कथा
भगवान जब वराह अवतार लिए थे तो पृथ्वी को गर्भोदक सागर से जब उठाए तो माता पृथ्वी और वराह भगवान का पुत्र के रूप में एक जन्मा बालक उनका नाम था भौमा क्योंकि उन्होंने असुरों का संग किया तो भौमासुर तो भौमासुर ही नरकासुर कहे जाते हैं। तो भौमासुर प्राग ज्योतिषपुर में अपना राज बनाए थे और बहुत सारे रानियों को चुराए थे तो जब सभी प्रार्थना किए तो कृष्ण उनको चुड़ाने के लिए गए थे तो कृष्ण सत्यभामा को लेकर वहाँ पे गए थे तो वो बहुत ही बुद्धिमान था असुर 3-4 तरह के बाधाएं किया था कोई भी उनको पहुँचना है तो ये सभी बाधाओं को पार करके जाना होता और उनका एक मित्र भी था मुर तो भगवान जब सत्यभामा के साथ गए प्राग ज्योतिषपुर में इन रानियों को छुड़ाने के लिए तो एक एक करके मतलब इलेक्ट्रिक फेंस का कंसेप्ट जो है वो
कोई सोलर वाला हुए
तो वो वही से आया है तो वो वेद करते हैं फिर बाद में मुरा का वध करते हैं जैसे भगवान का नाम मुरारी हो गया फिर बाद में जाकर नरकासुर का वध करते हैं तो नरकासुर का वध आज के दिन ही हुआ था
और उनका बेटा फिर उसको बेटे को
राजा बनाया ज्योतिष
तो पहले क्या किले किले के बाहर क्या था पानी था ऐसे रक्षा के लिए पानी हुआ करता था उसको पार कर दिया फिर दीवार को फोड़ दिया फिर अंदर चल के तहस नहस मचा दिया कृष्ण ने तो उनका ही पुत्र था फिर भी भगवान ने मार दिया और फिर क्या हो गया मूर्ख का वध कर दिया मुरारी बन गए भगवान नरकासुर का वध कर दिया फिर उसके बाद
रानियों को
जो
भी रानियां थे क्योंकि वो राक्षस ने चुराया था तो पद्धति ये था अगर कोई स्त्री को एक व्यक्ति हर लेता है तो दूसरा कोई विवाह नहीं करता तो उनकी और उनकी प्रार्थना भी थी कि भगवान ही उन्हें पति के रूप में मिले तो भगवान उन सब रानियों से विवाह करते हैं इसलिए 16,000
थे 16,100 और 8 अलग अलग समय पे अष्ट सखी वो वृंदावन भगवान कृष्ण के आठ रानियों के नाम क्या है?
रुक्मिणी,
सत्यभामा,
जाम्बवती,
जाम्बवती,
सत्यभामा,
लक्ष्मण,
लक्ष्मण,
सत्या,
सत्या,
कालिंदी,
कालिंदी,
मित्रवृंदा,
मित्रवृंदा, वृंदा नहीं, मित्रवृंदा,
मित्रवृंदा,
भद्रा, ये आठ अलग अलग समय पे रानियां हुई श्री कृष्ण की, और बाकी ये 16,100 ये प्राग ज्योतिषपुर से, तो कुल मिलाकर श्री कृष्ण की 16,108 रानियां द्वारका में, और हरेक के लिए एक विशाल महल, और हरेक महल में एक ही क्षण पे भगवान श्री कृष्ण उपस्थित, और अलग अलग कार्य करते, कहीं एक रानी के साथ शतरंज खेलते हैं, कहीं दूसरे महल में रानी के साथ ब्राह्मणों को दान देते हैं, कहीं तीसरे महल में बच्चों के साथ खेलते हैं, किसी चौथी महल में प्रसाद भोजन लेते हैं। जब नारद मुनि गए तो उन्होंने देखा कि आश्चर्य होगा, रे ये अलग 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 कार्य, यही एक ही भगवान एक ही समय इतने सारे स्थानों में उपस्थित है। तो भगवान के लिए 16,100 रानियों को के साथ विवाह करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये नरकासुर का वध, और कल है दीपावली, तो कल कोई दीपावली की कथा, आज मुझे जाना होगा क्योंकि कल दीपावली का क्लास मुझे मंदिर में देना है बेलगाम में। तो दीपावली के दिन पे क्या क्या हुआ था, फिर कल जो भी प्रवचन देने वो विस्तार में बोलो
आप, संक्षिप्त
बोलो क्या क्या हुआ था बताओ।
प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्या में प्रवेश किए, तो इसके अयोध्या अयोध्या में प्रवेश करने से पहले दुखी दुख था। जब प्रभु श्री रामचंद्र प्रवेश कर रहे तो पहली बार उन्होंने इतनी सारे दीपों को
दीपावली,
तो प्रभु श्री रामचंद्र का स्वागत किया अयोध्या में, तो उस स्मृति में दीप को लगाकर दीपावली मनाते। और कल के दिन ही द्वापर युग में जब कृष्ण बाली लीला कर रहे थे तो उकल बंधन लीला कल ही हुआ,
दामोदर लीला,
दामोदर लीला,
बहुत अच्छा। इसलिए कल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन, और उसके बाद वाले दिन प्रतिपद
गोवर्धन,
गोवर्धन पूजा, और एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन। तो यहाँ गोवर्धन पूजा मनाओगे ना, गोवर्धन वगैरह बनाओगे ना, यहाँ करोगे कि अंदर करोगे?
गेज़बो में,
गेज़बो में करेंगे। ठीक है, जय हो, हरे कृष्णा,
हरे
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे हरि बोल।
हम कुछ कुछ नए उदाहरण, मतलब सिद्धांत वही है लेकिन डिटेल्स,
वो सिद्धांत इसके अनुसार होना चाहिए। अभी गुरु साधु शास्त्र में हर एक बात तो नहीं कही गई है, परंतु उसको देखना चाहिए कि उनकी शिक्षाओं के अनुसार बैठती है कि नहीं बैठती।
सिद्धांतों को समझाने के लिए हम उदाहरण लेके जब समझाया
तो उदाहरण भी गुरु साधु शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, उससे हटके नहीं होना चाहिए।
क्योंकि बहुत बार मतलब जब भक्त कहते हैं तो अलग अलग भक्तों से श्रवण करते हैं आजकल विशेष करके, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है तो अलग अलग भक्तों के श्रवण करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये हंसा हंसा के सिर्फ हंसाए हंसाते ही है, क्या उसे किसी को लाभ हुआ क्या पता नहीं, और ये तो बहुत ही गंभीर बोलते हैं। तो मतलब ये हंसा रहे लेकिन उदाहरणों से, मतलब डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस कृष्ण भावनामृत को प्रदान नहीं कर रहे लेकिन ये डायरेक्ट प्रदान कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको हम कैसे
देखना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे श्रोताओं के बीच में रहना पड़ता है जहाँ डायरेक्टली सीधे आप भगवान के बारे में नहीं बात कर सकते। कभी कभी होता है, कई बार जब मैं जाता हूँ मुझे अलग अलग कंपनियों में जाना पड़ता है, तो वहाँ कंपनियों में तो हम कृष्ण के बारे में नहीं बोल सकते, उनको कुछ अपने विषय होते हैं, उसके बारे में बात करना पड़ता है। और इधर उधर से कभी भगवद गीता का नाम ले लेते हैं, भगवद गीता में ऐसे कहा, भगवद गीता में वैसे कहा, ऐसे कुछ उदाहरण इधर उधर से दे सकते हैं, लेकिन जैसे हम भागवतम क्लास में कभी बोलते हैं वैसे नहीं बोल सकते। तो ये परिस्थिति देश काल पात्र के अनुसार, परंतु ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो गलत हो। लोगों को आकर्षित करने के लिए धीरे धीरे से कुछ किया जाए तो अलग बात है, लेकिन किस हद तक वो करना चाहिए इसके बारे में थोड़ी भिन्नता मत में हो सकती है, सबका तरीका अलग अलग होता है। लेकिन हमें आज ये आवश्यकता नहीं है ये सब करने के लिए, ज़्यादा मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा कुछ हो इधर उधर ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हमें मुख्य बात देनी चाहिए।
महाराज, प्रमाणों की बात जब आती है, जैसे अभी भगवद गीता में भगवान कृष्ण सिंपल एनालॉजी दे के पुनर्जीवन का कंसेप्ट समझाते हैं, परंतु आज साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक इसमें बहुत सारी ऐसी सिद्धांत है, थेरीज है, जो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण के इसमें से समझाने का प्रयास करते हैं, पर बात यह है कि वो लोगों की कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अभी हम अपना दर्शन को स्थापित करने के लिए उसका यूटिलाइजेशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, पर फर्स्ट केस में अगर कर लिया तो क्योंकि उनका कंसिस्टेंसी ही नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है वो लोग, मतलब कोई थ्योरी 10 साल तक चलती है, कोई 20, कोई 50, तो ये प्रमाण के इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण की थ्योरीज को हमारे सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कितना यूटिलाइजेशन
कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी कभी नहीं। जैसे जो श्रद्धालु भक्त हैं उनको विज्ञान के दृष्टिकोण से कुछ प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण की आवश्यकता उनके लिए होती है जिनकी श्रद्धा नहीं है, या जिनको ज्ञान नहीं है, या जिनकी श्रद्धा कम है। ऐसे लोगों के लिए किया जाए तो फिर ठीक है, और जिनकी श्रद्धा अच्छी भी हो लेकिन थोड़ा उदाहरण देने से उनको श्रद्धा और बढ़ जाता है, तो ऐसे ठीक है, एक आध बार किया जा सकता है, परंतु अति इसके ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारी श्रद्धा विज्ञान पर आधारित नहीं है कि विज्ञान हमारा साथ दे रहा है नहीं दे रहा है। आज विज्ञान कुछ बोल रहा है, कल कुछ और बोलेगा, लेकिन शास्त्रों की बात बदलती नहीं है। हम आत्मा हैं, पहले से हैं, आगे भी रहेंगे, और आधुनिक विज्ञान कल कुछ बोलता था, आज कुछ बोल रहा है, कल कुछ और बोलेगा, तो हम अपनी बात को नहीं बदलेंगे। लेकिन जहाँ हमारे बातों से सहमत है विज्ञान, वहाँ तो उस हद तक हम कुछ बोल सकते हैं कि देखो ऐसे ऐसे है, परंतु जानना है कि अंततः विज्ञान जो भी बोले या ना बोले, शास्त्र हमारे लिए प्रमाण है, ठीक है।
महाराज, कर्नाटक में हम ऐसे देखते हैं कि एक एक गुरु परंपरा ऐसा है, उन्होंने भी बहुत से जो मानवीयता के बारे में या भगवान के बारे में वो मायावादी का सिद्धांत के हिसाब से उन्होंने प्रचार किया है, लेकिन वो जो उन्होंने तत्व दिया है या उन्होंने साहित्य दिया है ग्रंथ दिया, उनका जो श्लोकर हो या उनका पद्य हो, इसको हमारा टीचिंग में यूटिलिटी करना ठीक रहेगा, ताकि जैसे कि वो उन्होंने बोल रहे कि चार नियम पालन करना,
जहाँ तक बात मिलती है ठीक है, लेकिन उनका उदाहरण कोई भी हो देना कितना उचित रहेगा दूसरी बात है, क्योंकि फिर लोग क्या सोचेंगे कि उन्होंने इनका नाम लेकर ये बोला तो वो व्यक्ति ने बाकी जो बातें कही हैं वो भी इससे ये लोग सहमत होंगे। प्रभुपाद जी कभी कभी ऐसे कई लोगों की बातें कहते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको, जैसे कबीर का दोहा एक बार उन्होंने बोला था लेकिन इस कबीर के दर्शन को नहीं मानते थे वो प्रभुपाद जी, लेकिन इस दृष्टि से उनको बोला कि कैसे गलत बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने क्या बोला, पत्थर पूजने से हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीर का नाम बहुत बड़ा है, बड़ा संत मानते हैं लोग उनको, लेकिन वो मूर्ति को नहीं मानते थे, कहते ये पत्थर है तो पत्थर को पूजने से क्या मिलेगा, यदि एक पत्थर मूर्ति को पूजने से हरी मिलेंगे भगवान मिलेंगे तो मैं पहाड़ को पूजूंगा ना, लेकिन पहाड़ को थोड़ी पूजते हैं। तो ऐसे कुछ बात दर्शाने के लिए कुछ प्रभुपाद जी बोलते थे कभी कभी, और जहाँ वो सहमत भी थे किसी व्यक्ति किसे, वो सीमित रूप से सहमत थे उस एक बात के लिए, परंतु बार बार उन्होंने उनका उदाहरण नहीं दिया। ठीक है, हरे कृष्णा, सब लोग दीपदान रोज कर रहे हैं ना, और क्या क्या कर रहे हैं कार्तिक में विशेष, कुछ तो कर रहे हैं ना, कुछ तो अधिक कर रहे हैं ना, ठीक है बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन करो। ठीक, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौ प्रेमानंदे। तो अंदर कभी जाना है?